पृष्ठ संख्या 181 अध्याय 11 ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण प्रूफ्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। शीर्षक है विषय प्रवेश। ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में एक बड़ा ही स्वाभाविक प्रश्न होता है कि यदि ईश्वर धर्म का आधार है तो उसे धर्म की पूर्व मान्यता के रूप में ही होना चाहिए। उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता? जब ईश्वर अनुभवातीत, निराकार, अगोचर तथा बुद्धि से परे है तो उसे तर्कों द्वारा क्यों और कैसे सिद्ध किया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर में कहा जा सकता है कि धार्मिक व्यक्ति के लिए ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न समस्यात्मक नहीं है। वह तो श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दर्शन की दृष्टि से यह समस्या विशेष महत्वपूर्ण है। तर्कों द्वारा धर्म दार्शनिक इस विषय की मीमांसा करता है। पुनः प्रश्न उठता है कि यदि ईश्वर इंद्रिया अतीत है ही और हमारी सीमित बुद्धि की पहुंच से परे है तो दार्शनिक उसे तर्कों द्वारा कैसे सिद्ध कर सकता है? वास्तव में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ईश्वर का अस्तित्व पूर्ण रूपेण निसंदेह रूप में प्रमाणित किया जा सके। फिर भी मानव किसी भी विषय को जिस प्रकार बिना विचार किए उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर के संबंध में भी वह बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करता है और एक निर्णय लेने का प्रयास करता है। विचार करना बुद्धि का स्वाभाविक धर्म है। अतः विचार के स्वाभाविक आग्रह के कारण ही ईश्वर आदि संबंधी विषयों में निर्णय लिया जाता है। दर्शन इन्हीं विचारों का प्रतिफल है। इस विषय में एक दूसरा प्रश्न होता है कि यदि तर्क ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकते तो क्या इस संबंध में सभी दार्शनिक विचार निरर्थक हैं? विज्ञान की भांति दर्शन का कार्य भी अन्वेषण करने का है। विचारों और तर्कों द्वारा दार्शनिक सत्य का अन्वेषण करता है। दार्शनिक विचारों और तर्कों द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है कि हम तर्क द्वारा यह सिद्ध कर सकते हैं कि यदि ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है तो इसके अनास्तित्व के विषय में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। दूसरे यह कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर हो जाता है। तीसरे तार्किक छानबीन से हम अंधविश्वासों से छूट जाते हैं। इस विषय में लाटजे ठीक ही कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के सभी प्रमाणों से हम दो चीजों की ओर अग्रसर होते हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास के औचित्य की ओर और इस सर्वोच्च सिद्धांत की प्राप्ति के बोध की ओर। चौथे इन तर्कों से भी यह सिद्ध होता है कि किस तरह मानव से ईश्वर संबंधी विचारों की उत्पत्ति और विकास हुआ। इस प्रकार इन तर्कों से ईश्वर के संबंध में समस्त विचारों का पुष्टिकरण होता है। सारांश यह है कि यद्यपि ईश्वर का अस्तित्व श्रद्धा तथा विश्वास पर ही आधारित है, फिर भी तर्कों का सहारा लिया गया है। पृष्ठ संख्या 182। प्राचीन और आधुनिक दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रमाणों का उल्लेख किया है, जिन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। क है परंपरागत तर्क, ख है अनुभव मूलक तर्क। अब अगला शीर्षक है बिंदु क, परंपरागत तर्क। इस परंपरागत प्रमाणों को केयर्ड ने तीन विकसित क्रमों में रखा है, जिन्हें वे पहला विश्व संबंधी कॉस्मोलॉजिकल, दूसरा प्रयोजनवादी एवं तीसरा सत्तामूलक प्रमाण कहते हैं। केयर्ड के अनुसार धार्मिक चेतना का विकास इन्हीं तीन स्तरों में हुआ है। इन परंपरागत प्रमाणों से नवीन दृष्टिकोण प्राप्त करने तथा प्राचीन धर्मशास्त्रियों के विचारों से परिचित होने में सहायता प्राप्त होती है। अब हम इसका क्रमशः विवेचन प्रस्तुत करेंगे। अगला शीर्षक है पहला विश्व संबंधी प्रमाण, कॉस्मोलॉजिकल आर काजल आर्गुमेंट। इस तर्क को सृष्टिमूलक तर्क, आदि कारण विषयक तर्क अथवा आकस्मिकता परक तर्क या कॉन्टिंगेंसी भी कहते हैं। यह प्रमाण विश्व से संबंधित है। इसमें विश्व की व्याख्या करके ईश्वर की सत्ता प्रमाणित की जाती है। यह तर्क अत्यंत प्राचीन है। सर्वप्रथम प्लेटो ने अपने ग्रंथों में इसका रूप प्रदर्शित किया है, परंतु अस्पष्ट रूप में अरस्तु ने ही इस प्रमाण को प्रस्थापित किया। आगे चलकर इस तर्क से प्रभावित होकर संत टॉमस अक्वाइनस ने इस पर अत्यधिक बल दिया। अक्वाइनस के तीन तर्क इस विषय में प्रसिद्ध हैं, जो विश्व के निरीक्षण के आधार पर ही प्रस्तुत किए गए। विश्व में व्याप्त गति, आकस्मिकता, आवश्यकता तथा कारणता के अनुभव व निरीक्षण के आधार पर ही विश्वकर्ता का अनुमान किया गया है। अक्वाइनस इन तीन तर्कों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से बिंदु अ है गतिमूलक तर्क। समस्त विश्व में गति का अनुभव होता है। यह गति स्वयं तो उत्पन्न हो नहीं सकती। यह भी देखा जाता है कि एक गति दूसरी गति से उत्पन्न होती है। जैसे रेल के इंजन में गति देखी जाती है। इस गति का स्रोत भाप है, फिर उसका स्रोत अग्नि, कोयला आदि है, और उसमें व्याप्त गति का आधार कुछ और है। इस प्रकार गति की परंपरा अनंत है। यदि इस परंपरा को अनंत मानते हैं तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। अतः एक आदि गति के स्रोत को मानना होगा, जो कहीं से गति प्राप्त न करते हुए भी विश्व में गति देता है। धर्म में गति के इसी आदि स्रोत को ईश्वर कहा जाता है। अरस्तु भी गति के इस आदि स्रोत को पारमार्थिक कहते हैं। यही विश्व में व्याप्त संपूर्ण गति का आधार है। अब बिंदु ब है आकस्मिकता व आवश्यकता परक तर्क। विश्व के निरीक्षण और अनुभव से यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त वस्तुएं आकस्मिक हैं। आकस्मिक वस्तु उसे कहते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व न हो। हम देखते हैं कि विश्व की समस्त वस्तुएं नश्वर और क्षणिक हैं। विश्व की समस्त वस्तुओं की सत्ता न तो स्वतंत्र है और न आवश्यक। यहाँ की सभी वस्तुएं अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और आकस्मिक हैं। यदि आकस्मिक वस्तुओं की श्रृंखला पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि एक आकस्मिक और नश्वर वस्तु दूसरी आकस्मिक और नश्वर वस्तु को उत्पन्न करती है, दूसरी तीसरी को और तीसरी चौथी को आदि। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि इस आकस्मिक और नश्वर विश्व में कभी न कभी एक समय ऐसा आएगा जब कुछ भी न रह जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर शून्य से सृष्टि कैसे होगी? पृष्ठ संख्या 183। चूंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि वस्तुओं का आकस्मिक रूप में अस्तित्व न हो, अतः वस्तुओं के अस्तित्व के आधार पर हम दो निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। एक तो आकस्मिक वस्तुओं की अनंत परंपरा के कारण उत्पन्न अनावस्था दोष से बचने के लिए एक आत्मनिहित वास्तविक और अनिवार्य सत्ता को स्वीकार करना होगा जो ईश्वर है, और दूसरे विश्व में आकस्मिक वस्तुओं को उत्पन्न करने और उनके अस्तित्व को कुछ समय के लिए बने रहने के लिए ऐसी सत्ता को स्वीकार करना होगा जो आकस्मिक नहीं, आवश्यक, स्वतंत्र और वास्तविक हो। ऐसी सत्ता ही ईश्वर है। सारांश यह है कि विश्व की आकस्मिकता का प्रमुख आधार आवश्यकता है। आकस्मिक और नश्वर वस्तु की जड़ में एक आवश्यक और अनिवार्य सत्ता को स्वीकार करना होगा। यही आवश्यक सत्ता ही विश्व की वस्तुओं का आधार है। इस तर्क को केयर्ड ने इस प्रकार व्यक्त किया है, आकस्मिक विश्व का अस्तित्व है अथवा हमारे तात्कालिक अनुभव का विश्व आकस्मिक है, अतः एक निरपेक्ष आवश्यक सत्ता का अस्तित्व है। इस तर्क का पोषण लाइबनीज ने भी किया है। लाइबनीज के अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं आकस्मिक हैं, तो विश्व भी आकस्मिक कहा जा सकता है। सभी आकस्मिक वस्तुओं का पर्याप्त कारण होना चाहिए, अतः इस आकस्मिक विश्व का कारण ईश्वर ही है। अब अगला बिंदु स है कारणता मूलक तर्क। विश्व में अनुभव से यह भी प्रकट होता है कि यहाँ की जितनी घटनाएं घटित होती हैं वे पूर्ववर्ती घटनाओं के कार्य हैं। स्वयं पूर्ववर्ती घटनाएं अपनी पूर्ववर्ती घटनाओं से घटित होती हैं। इस प्रकार अनंत कार्य कारण की श्रृंखला चलती रहती है। अतः अनावस्था दोष से बचने के लिए एक आदि कारण को मान लेना चाहिए। इस आदि कारण को ही ईश्वर कहते हैं। इस आदि कारण का कोई कारण नहीं है, वह अपना कारण स्वयं है। इसी तर्क को दूसरी तरह भी रखा जाता है। सभी मिश्रण एक कार्य है, उसका कारण होना चाहिए। विश्व भी कई उपादानों से मिलकर बना है, अतः विश्व का भी कोई कारण होगा। यदि विश्व का कारण ससीम होगा तो उसका भी एक दूसरा ससीम कारण मानना होगा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा। इस प्रकार अनवस्था दोष हो जाएगा। अतः इस दोष से बचने के लिए विश्व का एक असीम कारण मानना ही होगा, और वह असीम कारण ईश्वर है। प्लेटो ने इस तर्क का समर्थन किया है। उनके अनुसार अकारण कोई घटना नहीं घटित होती। डेकार्त ने भी विश्व संबंधी प्रमाण का समर्थन किया है। उनके अनुसार मैं अपना सृष्टिकर्ता स्वयं नहीं हो सकता। यदि माता पिता को माने तो प्रश्न होगा उनका सृष्टिकर्ता कौन है। यदि आगे बढ़ेंगे तो अनवस्था दोष होगा। अतः एक आदि कारण ईश्वर को मानना होगा। फ्लिंट के अनुसार भी प्रकृति एक कार्य है। असीम कारण के रूप में इस विश्व का कारण ईश्वर को मानना होगा। जी एच जाइंस के मत में मूल कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की जाती है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो अक्वाइनस के विश्व संबंधी प्रमाण के तीनों रूपों में एक ही तत्व वर्तमान है, वह है कारणता का नियम। गति के रूप में आदि गति का कारण ईश्वर है। आकस्मिकता व आवश्यकता में एक प्रथम अनिवार्य स्वतंत्र तथा आत्मनिहित सत्ता कारण के रूप में है, और कारणता के रूप में ईश्वर आदि कारण के रूप में माना ही जाता है। परंतु यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि विश्व संबंधी तर्क को कार्य कारण तर्क तो कहा जाता है, परंतु कार्य कारण तर्क को विश्व संबंधी तर्क नहीं कह सकते। इस प्रमाण की आलोचना ईश्वर को प्रथम कारण मानने के संदर्भ में ही की गई है। पृष्ठ संख्या 184, शीर्षक है आलोचना। इस प्रमाण की आलोचनाओं को हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। ह्यूम तथा कांट द्वारा की गई आलोचनाएं तथा समकालीन विचारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियां। ह्यूम अनुभववादी मत के आधार पर इस प्रमाण की निम्नलिखित आलोचना प्रस्तुत करते हैं। अब अगला शीर्षक है बिंदु अ, ह्यूम द्वारा आलोचना। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है कारण कार्य में कोई आवश्यक संबंध नहीं है। चूंकि ह्यूम अनुभववादी दार्शनिक हैं, अतः उनके अनुसार अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही सत्य माना जाना चाहिए। ह्यूम का तर्क है कि अनुभव से हमें कारण तथा कार्य के बीच आवश्यक संबंध का ज्ञान नहीं होता। अतः कार्य कारण के नियम पर आधारित ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण निर्दोष नहीं कहा जा सकता। बिंदु दूसरा है प्रत्येक वस्तु का कोई कारण है तो ईश्वर का कारण कौन। यदि यह मान भी लिया जाए कि कार्य कारण नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कोई कारण अवश्य होना चाहिए तो ईश्वर का भी कोई कारण मानना होगा। अतः ईश्वर को स्वयं श्रेष्ठ आदि कारण के रूप में नहीं माना जा सकता। बिंदु तीसरा है, अंतिम कारण ईश्वर को न मानकर प्रकृति को क्यों न माना जाए? यदि प्रत्येक कार्य का एक कारण है और कार्य कारण की जब अनंत श्रृंखला है तो अनावस्था दोष से बचने के लिए ईश्वर को ही आदि कारण क्यों माना जाए? प्रकृति को भी आदि कारण माना जा सकता है। बिंदु चौथा है, न तो विश्व एक सामूहिक कार्य है और न व्यष्टि पर लागू होने वाला नियम समष्टि पर ही लागू होता है। कार्य कारण नियम के अनुसार एक विशेष कार्य का एक विशेष कारण होता है। विश्व के सभी कार्यों को जोड़कर विश्व को एक सामूहिक कार्य नहीं माना जा सकता। यदि यह बात सही है तो विश्व का एक आदि कारण खोजना असंगत है। दूसरी ओर यह भी है कि जो नियम व्यष्टि पर लागू होता है वही समष्टि विश्व पर कैसे लागू किया जा सकता है? बिंदु पांचवा है, ससीम कार्य से ससीम कारण ही सिद्ध होता है, असीम की कल्पना व्यर्थ है। कार्य कारण के नियम के आधार पर यदि हम किसी चेतन सत्ता को विश्व का कारण मान भी लेते हैं तो यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वह सत्ता असीम ही है? क्योंकि विश्व सीमित और आकस्मिक है तो इसका कारण भी सीमित और आकस्मिक ही होगा। असीम की कल्पना व्यर्थ है। बिंदु छठवां है, क्या आदि कारण एक ही है? कार्य कारण नियम से ही यह सिद्ध होता है कि कोई कार्य अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम होता है। अतः यदि जगत का आदि कारण स्वीकार भी कर लें तो यह कैसे कह सकते हैं कि आदि कारण एक ही है? बिंदु सातवां है, कारण कार्य की श्रृंखला में ईश्वर या तो घटना विशेष है या श्रृंखला से बाहर है। यदि ईश्वर कारण कार्य की श्रृंखला के अंतर्गत है तो वह भी एक विशेष घटना है और विश्व की तरह उसका भी कोई कारण होगा। फिर तो वह आदि कारण हो नहीं सकता। और यदि यह कहा जाए कि ईश्वर इस श्रृंखला के बाहर है तो विश्व से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता, तो फिर ईश्वर विश्व का कारण कैसे माना जा सकता है? पृष्ठ संख्या 185, शीर्षक है बिंदु ब, कांट द्वारा आलोचना। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है, कार्य कारण बुद्धि का विकल्प है, यह अनुभव सापेक्ष है, इससे अनुभव निरपेक्ष सत्ता ईश्वर को नहीं सिद्ध किया जा सकता। कांट के अनुसार कार्य कारण का नियम विश्व की वस्तुओं पर ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि विश्व की वस्तुएं अनुभव सापेक्ष हैं, अर्थात अनुभव पर निर्भर हैं। परंतु ईश्वर जो अनुभव निरपेक्ष है उसे बुद्धि के विकल्पों कार्य कारण के नियम द्वारा नहीं जाना जा सकता। अतः विश्व संबंधी तर्क ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित नहीं कर सकता। बिंदु दूसरा है, विश्व संबंधी तर्क से आवश्यक सत्ता सिद्ध नहीं होती। विश्व संबंधी तर्क एक आवश्यक सत्ता को स्वीकार करता है, परंतु जब स्वयं जगत आकस्मिक और नश्वर है, आवश्यक नहीं तो उसका कारण आवश्यक कैसे हो सकता है? कारण कार्य के नियम के अनुसार कारण तथा कार्य में समरूपता होनी चाहिए, परंतु विश्व और ईश्वर में कोई समरूपता नहीं है। कांट के अनुसार आवश्यक सत्ता हेतु या कंडीशन्ड होनी चाहिए, जबकि ईश्वर को विश्व संबंधी तर्क स्वतंत्र या अहेतुक मानता है। अतः इन दोनों में विरोध स्पष्ट है। अतः यह तर्क ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने में असफल है। अगला शीर्षक है बिंदु स, समकालीन विचारकों द्वारा आपत्तियां। कुछ समकालीन विचारक विश्व संबंधी तर्क की मान्यता को ही निराधार और दोषपूर्ण बतलाकर इसका खंडन करते हैं। इसमें पहला बिंदु है ए जे एर तथा रसेल द्वारा खंडन। एर का कहना है कि विश्व एक घटना प्रवाह या श्रृंखला है। यह घटना प्रवाह क्यों है? हमें यह न पूछकर घटना प्रवाह को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार रसेल भी कहते हैं कि विश्व और उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना चाहिए। वह क्यों है, यह प्रश्न पूछना व्यर्थ और भ्रमपूर्ण है। घटना विशेष के बारे में तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है और उसका समाधान किया भी जा सकता है, परंतु घटनाओं की समष्टि के बारे में ऐसा प्रश्न पूछना दोषपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ समष्टि के अंशों पर लागू किया जाता है उसे समष्टि पर लागू करने से संग्रह दोष हो जाता है। बिंदु दूसरा है एल राइखेनबाख के अनुसार यह दार्शनिक तर्क न होकर शाब्दिकता मात्र है। किसी पद की सार्थकता प्रसंग विशेष से ही मानी जा सकती है। एक ही पद किसी प्रसंग में प्रयुक्त होने पर अर्थपूर्ण हो जाता है और कहीं निरर्थक, जैसे संतान वाले व्यक्ति से पूछना कि किसके पिता हैं, अर्थयुक्त है, परंतु संतानहीन व्यक्ति के विषय में यही प्रश्न निरर्थक होगा। संपूर्ण विश्व का कारण ढूंढना संतानहीन व्यक्ति से किसी के पिता होने की बात पूछने के समान है, क्योंकि कारण शब्द से किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य संबंध प्रकट होता है, परंतु संपूर्ण विश्व का कोई कारण इसलिए नहीं हो सकता कि विश्व की परिभाषा के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। विश्व संबंधी प्रश्न दार्शनिक तर्क नहीं, केवल निरर्थक शाब्दिकता है। बिंदु तीसरा है जे हौस्पर्श द्वारा आलोचनाएं। इसमें बिंदु अ है विश्व संबंधी तर्क ईश्वर के गुणों की स्थापना नहीं करता। जैसे जे एन हिंडले ने कहा कि धर्म में ईश्वर को पूज्य, असीम, सर्वशक्तिमान एवं दयालु होना चाहिए, परंतु हौस्पर्श ने ठीक ही कहा है कि विश्व संबंधी तर्क ईश्वर की सत्ता स्थापित करने के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता की स्थापना नहीं करता। पृष्ठ संख्या 186। हस्पर्श के शब्दों में ईश्वर की इस विशेषता के अतिरिक्त कि ईश्वर विश्व का कारण है, अन्य किसी विशेषता की स्थापना नहीं की जाती। यह तर्क केवल ईश्वर के अस्तित्व की ही स्थापना करता है। बिंदु ब है, यदि सभी वस्तुओं जिनमें विश्व भी है का कारण है तो ईश्वर का कारण क्या है। हस्पर्श के अनुसार इस तर्क के विरोध में सामान्यतया यह आक्षेप किया जा सकता है कि यह तर्क अनवस्था दोष की ओर ले जाता है। जिस प्रश्न का उत्तर यह ईश्वर के आधार पर देता है, वही प्रश्न ईश्वर के संबंध में भी पूछा जा सकता है। यदि प्रत्येक वस्तु का कारण है जिसमें यह विश्व भी है, तो ईश्वर का कारण कौन है? हम जिन प्रश्नों को विश्व के संबंध में उठाते हैं, वही प्रश्न ईश्वर के संबंध में करने से कौन रोक सकता है? इसी तर्क को रसेल ने व्यक्त किया है कि अनवस्था दोष से बचने के लिए ईश्वर को कारण मान लिया जाता है, परंतु जिस प्रकार गणित में अनंत श्रृंखला चलती रहती है, उसी प्रकार कार्य कारण की अनंत श्रृंखला मानने में क्या कठिनाई है? अनवस्था दोष से बचने के लिए ईश्वर को आदि कारण मानना उचित नहीं प्रतीत होता। अब बिंदु चौथा है, आकस्मिकता के आधार पर आवश्यक तथा तथ्यात्मक सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती। विश्व संबंधी तर्क अनुभव पर आधारित है। अक्वाइनस ने इसी का सहारा लिया है तथा विश्व को आकस्मिक बताया है, परंतु प्रश्न होता है कि क्या संपूर्ण विश्व अनुभव का विषय हो सकता है? आकस्मिकता तो एक अमूर्त धारणा है। यदि यह बात सही है तो इसके आधार पर अनिवार्यता या तथ्यात्मकता कैसे सिद्ध की जा सकती है? बिंदु पांचवा है, जीई ह्यूज के अनुसार आवश्यक शब्द तर्क वाक्य में प्रयुक्त होता है, न कि किसी वस्तु या सत्ता के लिए। विश्व संबंधी प्रमाण ईश्वर को आवश्यक सत्ता स्वीकार करता है। यहाँ आवश्यक सत्ता का अर्थ तार्किक रूप में आवश्यक सत्ता के रूप में लिया गया है, ऐसी सत्ता जिसका अनस्तित्व वैसा ही है जैसा वर्गाकार वृत्त का। वास्तव में आवश्यक शब्द तर्क वाक्य के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग किसी वस्तु या ईश्वर के लिए करना अनुचित है। इस तर्क में आवश्यक शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है, जो अनुचित और असंगत है। बिंदु छठवां है, केयर्ड द्वारा आलोचना। इसमें बिंदु अ है, ईश्वर की अनंतता की गलत व्याख्या। धर्म में तार्किक आधार पर हम अपूर्ण से पूर्ण की ओर, नश्वर से अनश्वर की ओर तथा आकस्मिक से आवश्यक की ओर बढ़ते हैं, अर्थात हम शांत को छोड़ते हुए अनंत की ओर बढ़ते हैं, परंतु ऐसा अनंत सत्य अनंत नहीं कहा जा सकता जो शांत का निषेध करता है। वास्तव में अनंत सत्ता तो वह है जो शांत या ससीम को लेकर हो, परंतु यह तर्क ससीम का निषेध एवं खंडन करता है। अतः ऐसा अनंत सही अर्थ में अनंत नहीं है। केयर्ड के शब्दों में किंतु एक अनंत जो केवल शांत या ससीम का निषेध है, या एक आवश्यक सत्ता जो आकस्मिक का निषेध है, वह वास्तविक अनंत या निरपेक्ष नहीं है। वह है धर्म के विकास में बाधक। केयर्ड ने दूसरी आपत्ति की है कि इस तर्क द्वारा धार्मिक भावना के विकास में बाधा पहुंचती है, क्योंकि यह तर्क ससीम के निषेध द्वारा असीम की व्याख्या करता है। परंतु धर्म में ससीम आत्मा का संबंध असीम से होना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 187। उपासक और उपास्य संबंध इसी से संभव है। यदि उपासक का निषेध होगा तो उपास्य का अस्तित्व कैसा? अतः यह तर्क असीम तथा ससीम में अंतर उत्पन्न करके धार्मिकता पर कुठाराघाव करता है, जो धार्मिकता के विकास के लिए हितकर नहीं है। फिर भी निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण रूप में इस तर्क का इतना महत्व तो बताया ही जा सकता है कि इस तर्क के आधार पर हम विश्व की आकस्मिकता और नश्वरता को देखते हुए अनंत सत्ता की ओर अग्रसर होते हैं। आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का यह प्रस्थान बिंदु है। अगला शीर्षक है दूसरा, प्रयोजनवादी तर्क, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसके अंतर्गत शीर्षक है परिचय एवं परिभाषा। यूनानी शब्द टेलियोस से अंग्रेजी शब्द टेलियोलॉजी बना है। टेलियोस का अर्थ है लक्ष्य या प्रयोजन। प्रयोजन पर आधारित तर्क को प्रयोजनवादी तर्क कहते हैं। इस तर्क के अनुसार विश्व में सर्वत्र ही योजना, व्यवस्था, दूरदर्शिता, क्रमिकता एवं अभियोजन देखने को मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी चैतन्य शक्ति ने ही अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए इस विश्व की रचना की है। इस तर्क को रचना मूलक प्रमाण भी कहा जाता है। प्रयोजनवादी तर्क बहुत प्राचीन है। इसके समर्थक प्लेटो, बेकन तथा समस्त ईश्वरवादी धर्म माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर संबंधी प्रमाणों का खंडन करने वाले कांट तथा ह्यूम ने भी इस तर्क का समर्थन किया है। आधुनिक विचारकों में विलियम पैली, मार्टिनो, टेनेंट तथा कुछ प्रत्ययवादियों ने इस तर्क को अत्यंत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब इसके अंतर्गत बिंदु क है, विलियम पैली द्वारा प्रस्तुत प्रयोजनवादी प्रमाण। विलियम पैली ने घड़ी का उदाहरण देकर इस तर्क को समझाने का प्रयास किया है। यदि किसी निर्जन स्थान में कोई घड़ी मिले और उससे ठीक समय भी मिलता रहे तो क्या उसकी बनावट और यंत्र को देखकर कोई यह नहीं समझेगा कि किसी ने समय जानने के प्रयोजन से ही इसकी रचना की है। जिस प्रकार यह लघु यंत्र अपने आप नहीं बना, बल्कि इसके निर्माण के लिए एक यंत्रकार की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इस विराट विश्व की रचना, व्यवस्था, जटिलता और अभियोजनशीलता को देखकर किसी महान बुद्धियुक्त शक्ति की ओर संकेत मिलता है, जिसने इस विश्व की रचना किसी उद्देश्य से ही की है। विश्व में व्याप्त व्यवस्था मानव बुद्धि से नितांत बाहर है। पुनः शरीर में आँख की रचना जिस प्रकार देखने के उद्देश्य से हुई है, उसी प्रकार विश्व की रचना किसी प्रयोजन से हुई है। बिंदु ख है मार्टिनो द्वारा प्रमाण। मार्टिनो पैली द्वारा प्रस्तुत इसी तर्क को और भी अधिक अस्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं। इनके अनुसार विश्व स्वतः नहीं उत्पन्न हुआ है, इसका निर्माणकर्ता कोई अवश्य है। विश्व की रचना के पीछे उसका उद्देश्य है। यह उद्देश्य विश्व की व्यवस्था को देखकर ही ज्ञात हो जाता है। मार्टिनो का कहना है कि बुद्धि तथा प्रयोजन युक्त व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं, जैसे चुनाव, संयोग तथा क्रमिकता। ये सभी लक्षण विश्व के जीवों के शरीर की रचना तथा अभियोजन में मिलते हैं। उदाहरणार्थ, जीवों के अंगों का चुनाव उनकी परिस्थिति के अनुकूल ही किया गया है। हिंसक जानवरों के तेज पंजे, चिड़ियों के लिए पंखों तथा जल में रहने वाले जीवों के श्वास के अंग उनकी परिस्थिति के अनुकूल ही चुने गए हैं। इस चुनाव से असीम बुद्धि की ओर संकेत मिलता है। पृष्ठ संख्या 188। यही नहीं, जीवों के अंगों में संयोग तथा समायोजन भी परिलक्षित होता है। जैसे हिंसक जीव के यदि तेज पंजे हैं तो उनके दांत भी तेज हैं तथा अतड़ियां भी मजबूत हैं, जिनसे वह अपने शिकार आसानी से मारता, खाता और पचाता है। इसी प्रकार संयोग और समायोजन प्रकृति के स्तनधारी जीवों, कीड़े मकोड़ों तथा पेड़ पौधों में भी मिलता है। अतः इस आधार पर भी विश्व रचना के पीछे बुद्धियुक्त शक्ति का हाथ प्रतीत होता है। मार्टिनो ने क्रमिकता का उदाहरण जीवों के अस्तित्व बने रहने के आधार पर दिया है और बताया है कि निम्न स्तर के जीवों से ही उच्च स्तर के जीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। चुनाव, संयोग तथा क्रमिकता पूर्ण व्यवस्था को देखकर ही प्रमाणित किया जाता है कि इस विश्व का रचयिता कोई महान शक्ति है, जिसने इस विश्व को बुद्धिमत्ता से व्यवस्थित किया है। बिंदु ग है टेनेंट तथा कुछ प्रत्ययवादियों के प्रमाण। पैली तथा मार्टिनो ने जिस समयोजनवादी तर्कों को प्रस्तुत किया, उसका जोरदार खंडन मिला तथा डार्विन के विकासवाद ने किया। इनके खंडनों से बचने के लिए प्रत्ययवादियों तथा टेनेंट ने इस प्रमाण को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया। हेगल से प्रभावित होकर पिंगल, पेटिसन तथा बोसांके ने पैली तथा मार्टिनो की तरह विकास को जीवों तक ही सीमित न रखकर जागतिक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विश्व के विकास की व्याख्या यांत्रिक नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि विश्व में प्राप्त जीवन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे प्रजनन प्रक्रिया, स्वतः संचालन की क्रिया, स्वतः स्फूर्ति तथा स्व उद्धार आदि, जो यांत्रिकता के सर्वथा विरुद्ध है। यही नहीं, मानव में नैतिकता का विकास, अनुशासन, सहयोग और इनसे फलित विज्ञान, कला, साहित्य, नीति और धर्म यह सिद्ध करते हैं कि मानव जीवन में मूल्यों का अस्तित्व है। विश्व इन्हीं मूल्यों पर ही आधारित है। बुद्धि से ही इन मानवीय मूल्यों का विकास सिद्ध होता है। यदि हम समष्टि रूप में विश्व पर दृष्टिपात करें तो उसके पीछे मूल्ययुक्त महान बुद्धिमान शक्ति को ही प्राप्त करेंगे। प्रत्ययवादियों की पृष्ठभूमि में ही टेनेंट ने अपने प्रयोजनवादी तर्क को प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि विश्व की गेयता जीवों के अंगों के बीच समायोजन, जड़ वस्तुओं की जीवन के लिए उपयोगिता, प्रकृति का सौंदर्य, नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति में विश्व की व्यवस्था और विकास की प्रगतिशीलता आदि तथ्यों के प्रमाणों से विश्व की प्रयोजनवादी धारणा प्रमाणित होती है। टेनेंट ने विश्व के विकास और प्रगति को देखकर यह सिद्ध करते हैं कि इस प्रगति का यही लक्ष्य ही है कि ऐसा विश्व उत्पन्न हो जिसमें मूल्यों की सुरक्षा हो सके। अतः विश्व की व्यवस्था तथा मूल्यों के अस्तित्व के आधार पर प्रयोजनीयता सिद्ध होती है। टेनेंट की मूल्यपरक व्याख्या से प्रयोजनवादी तर्क को पर्याप्त बल मिलता है। फिर भी केवल तर्कों से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इस प्रमाण में भी बहुत कमियां हैं। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला बिंदु है, पैली का तर्क सादृश्य अनुमानिक है। ह्यूम ने पैली के इस तर्क की आलोचना की है। घड़ी की उपमा सही नहीं बैठ सकती। यदि विश्व को एक विशाल यंत्र माना जाए तो जिस प्रकार यंत्र में नैतिकता, धर्म और स्वतंत्रता नहीं होती, उसी प्रकार विश्व में नीति तथा धर्म का स्थान कहाँ रहेगा। अतः नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए यह सादृश्य अनुमान सही नहीं माना जा सकता। दूसरा बिंदु है, मानवीकरण का दोष। इस तर्क में ईश्वर को मानव के रूप में कल्पित किया गया है, परंतु असीम ईश्वर में मानवीय गुणों का आरोपण करने पर उसकी असीमता समाप्त हो जाती है और वह ससीम हो जाता है। पृष्ठ संख्या 189। बिंदु तीसरा है, केयर्ड द्वारा आलोचना। यह तर्क ईश्वर को एक शिल्पकार या प्रयोजनकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु ईश्वर जो एक पूर्ण सत्ता और असीम है, उसको एक शिल्पकार या प्रयोजनकर्ता मानने पर उसकी पूर्णता का खंडन होता है। शिल्पकार तो सांसारिक वस्तुओं और उपादानों पर निर्भर होता है। यदि ईश्वर को शिल्पकार मानते हैं तो वह भी बाह्य उपादानों पर निर्भर करेगा, फिर उसका ईश्वरत्व समाप्त हो जाएगा। केयर्ड के शब्दों में एक बाह्य शिल्पकार का विचार पूर्ण अथवा निरपेक्ष सत्ता की प्रज्ञा और शक्ति के प्रतिकूल है। मानव शिल्पकार तो प्राकृतिक नियमों और वस्तुओं से सीमित होता है। यदि ईश्वर को बाह्य शिल्पकार के रूप में कल्पित करें तो वह भी ससीम हो जाएगा। ऐसा सीमित ईश्वर भक्त का आराध्य नहीं हो सकता। अतः इस तर्क से धर्म का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः यह तर्क धर्म अनुकूल ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने में असमर्थ है। बिंदु चौथा है ह्यूम तथा कांट द्वारा आलोचना। ह्यूम का कहना है कि प्रयोजनवादी तर्क द्वारा सीमित और अपूर्ण ईश्वर की सिद्धि होती है। इसी को कांट ने कहा है कि अधिक से अधिक प्रयोजनवादी तर्क द्वारा एक निमित्त कारण की सिद्धि होती है। यह तर्क इतना सिद्ध करता है कि विश्व में किसी चेतन सत्ता का प्रयोजन निहित है। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि विश्व का सृष्टिकर्ता कोई ईश्वर है। बिंदु पांचवा है विश्व में जहाँ एक ओर व्यवस्था है वहाँ दूसरी ओर अव्यवस्था। प्रयोजनवादी तर्क विश्व में व्याप्त व्यवस्था के आधार पर ही किसी बुद्धिमान परम शक्ति की कल्पना करता है, परंतु अनुभव से यह ज्ञात होता है कि जहाँ विश्व में व्यवस्था है वहाँ अव्यवस्था भी तो वर्तमान है। हम विश्व में चतुर्दिक अशुभ संघर्ष बाढ़ भूकंप तथा मृत्यु का राज्य पाते हैं। अतः एक तो जगत में पूर्ण व्यवस्था का अभाव है, दूसरे यदि किसी बुद्धिमान परम शक्ति का कोई प्रयोजन होता और उसके द्वारा संपादित व्यवस्था होती तो विश्व में ऐसी अनियमितता क्यों होती। इससे सिद्ध होता है कि न तो विश्व में कोई प्रयोजन है और न ईश्वर जैसी कोई व्यवस्थापक सत्ता ही। बिंदु छठवां है विकासवादी सिद्धांत से इस तर्क का खंडन। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार विश्व का विकास और इसकी प्रगतिशीलता प्राकृतिक नियमों जैसे योग्यतम की विजय और प्राकृतिक चुनाव तथा वस्तुओं के आपस में मिलन और परिवर्तन के नियम पर निर्भर है। प्रयोजनवादी जहां बाह्य व्यवस्थापक ईश्वर जैसी सत्ता को स्वीकार करते हैं वहां विकासवादी बिना किसी बाह्य व्यवस्थापक के प्राकृतिक नियमों के आधार पर विश्व में व्याप्त आंतरिक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। विश्व स्वयं व्यवस्थित है, व्यवस्था के लिए ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः आधुनिक विकासवादी चिंतकों की दृष्टि से इस तर्क का कोई महत्व नहीं है। बिंदु सातवां है ईश्वर में प्रयोजन कहाँ से आया। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि यदि मान लिया जाए कि विश्व में प्रयोजन है तो यह सिद्ध नहीं होता कि इसमें ईश्वर जैसी सत्ता का ही प्रयोजन सन्निहित है। यदि प्रयोजनकर्ता ईश्वर को माना जाता है तो प्रश्न होता है कि ईश्वर में प्रयोजन कहाँ से आया। पृष्ठ संख्या 190 बिंदु 8वां है। प्रयोजनवादी तार्किक अनुमान से पूर्ण ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते। तर्क अनुभव मूलक विधि पर आधारित होते हैं। चूंकि प्रयोजनवादियों का अनुभव खंड अनुभव है, अतः सीमित अनुभव से सीमित ईश्वर को ही सिद्ध कर सकते हैं, पूर्ण ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते। केयर्ड ने इस तर्क की आलोचना करते हुए एक समाधान भी प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि प्रयोजनवादियों के सभी दोषों को तभी दूर किया जा सकता है जब यह मान लिया जाए कि विश्व में जो विकास व्यवस्था और प्रगति हो रही है वह जीव में आंतरिक रूप से विद्यमान है। जीव में स्वनिर्माण, आत्मविकास, आत्मस्फूर्ति आदि तत्व वर्तमान है। विकास के लिए किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। विकास और प्रगति जीव की आंतरिकता का ही बाह्य स्वरूप है। अगला शीर्षक है प्रयोजनवादी तर्क का महत्व। उपर्युक्त विभिन्न त्रुटियों के रहते हुए भी इस तर्क के महत्व को स्वीकार किया जाता है। प्रारंभ में प्लेटो ने इस तर्क के पक्ष में ही यह कह करके इसका पोषण किया कि मानव में निहित बुद्धि की उत्पत्ति का कारण वह सत्ता है जिसे ईश्वर कहते हैं। इस तर्क की महत्ता इससे भी अधिक प्रकट होती है कि इसके आलोचकों ने भी इसकी प्रशंसा की है। कांट ने भी परंपरा मूलक तर्कों की आलोचना की है, तथापि प्रयोजनवादी तर्क की अवहेलना नहीं की है। इसके विषय में कांट की उक्ति प्रसिद्ध है कि यह प्रमाण सदैव ही आदर के साथ उल्लेखनीय है। यह प्रमाण प्राचीनतम, अस्पष्टतम तथा सामान्य मानव जात की बुद्धि के सर्वथा अनुकूल है। यह विश्व में समाहित प्रयोजन और प्रयोजक के प्रति हमारी आस्था और विश्वास के अनिवार्य रूप से दृढ़ करता है। ह्यूम इसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सृष्टि में सर्वथा ही एक उद्देश्य, अभिप्राय एवं प्रयोजन दृष्टिगत होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसे अस्वीकार करे। यही नहीं, लगभग सभी विज्ञान सृष्टिकर्ता के ज्ञान की ओर ले जाते हैं। हस्पर्श जो इस तर्क का जोरदार खंडन करते हैं इसके पक्ष में कहते हैं कि समस्त तर्कों में यह सबसे अधिक लोकप्रिय तर्क है। सामान्य मनुष्य को यह तर्क आकर्षक, सरल एवं प्रिय लगता है। अब अगला शीर्षक है क्या प्रयोजनवादी तर्क विश्व संबंधी तर्क का विस्तार है। यदि इन दोनों तर्कों की तुलना की जाए तो एक बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि इन दोनों का आधार विश्व ही है। विश्व रचना को देखकर ही दोनों ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहले विश्व संबंधी तर्क विश्व को कार्य मानकर उसके कारण के रूप में ईश्वर की स्थापना करता है। इसके पश्चात प्रयोजनवादी तर्क विश्व की व्यवस्था, योजना और संगठन को देखकर व्यवस्थापक और प्रयोजक के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। विश्व संबंधी तर्क विश्व के बाह्य कारण को ढूंढता है और प्रयोजनवादी तर्क विश्व के प्रयोजन पर विचार करता है। एक तर्क में विश्व की नश्वरता, आकस्मिकता और कारण की खोज ईश्वर के रूप में की जाती है और दूसरे तर्क में विश्व की व्यवस्था पर विचार करके व्यवस्था के कारण की खोज ईश्वर के रूप में की जाती है। सारांश में प्रयोजनवादी तर्क विश्व संबंधी तर्क की तरह विश्व को ही आधार बनाकर ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। यही कारण है कि प्रयोजनवादी तर्क को विश्व संबंधी तर्क का ही विस्तार कहा गया है। पृष्ठ संख्या 191, शीर्षक है तीसरा, सत्ता मूलक प्रत्यय मूलक प्रमाण या तत्व मूलक तर्क, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसके अंतर्गत शीर्षक है परिचय एवं परिभाषा। इस तर्क का प्रारंभ सबसे पहले प्लेटो और बाद में संत अगस्तीन के विचारों में मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में मध्ययुगीन संत अनसेल्म ने ही इस तर्क द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया है और इसे सर्वोच्च रूप प्रदान किया है। आधुनिक युग में इसे डेकार्त, स्पिनोजा और लाइबनित्ज ने भी अपनाया है। कहा जाता है कि हेगल और केयर्ड द्वारा अपनाए जाने पर इस तर्क को प्रमुख स्थान मिल गया। इन दार्शनिकों ने इसको आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया है। यद्यपि विभिन्न दार्शनिकों ने इस तर्क को थोड़े बहुत अंतर के साथ विभिन्न रूपों में ग्रहण किया है, तथापि इस तर्क का मूल विषय यही है कि ईश्वर प्रत्यय में ही ईश्वर का अस्तित्व निहित है। अर्थात इस तर्क में ईश्वर की धारणा से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया गया है। इस तर्क में इसके लिए आग्रह किया गया है कि ईश्वर प्रत्यय में कुछ अनोखापन है, इसीलिए यह केवल प्रत्यय मात्र नहीं हो सकता। इस तर्क को अनसेल्म ने ही विद्वतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। बिंदु अ है अनसेल्म का सत्ता मूलक प्रमाण। अनसेल्म तर्क करते हैं कि ईश्वर एक सत्ता है, उससे महान का अनुमान नहीं किया जा सकता, परंतु एक प्रत्यय जिसका अस्तित्व केवल हमारी बुद्धि में ही है उतना महान और पूर्ण नहीं होगा जितना कि वह जिसका अस्तित्व बुद्धि के अतिरिक्त स्वतः में भी होगा। इसलिए ईश्वर प्रत्यय में ही सत्ता सन्निहित है। अनसेल्म का यह भी तर्क है कि यदि ईश्वर के प्रत्यय में ईश्वर का अस्तित्व नहीं स्वीकार किया जाएगा तो आत्मविरोध उत्पन्न हो जाएगा। यदि इसे अस्तित्वशील नहीं माना जाए तो इसे अस्तित्वशीलता के गुण का अभाव होगा, जिससे वह पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसलिए यदि हमारी बुद्धि में ईश्वर का प्रत्यय मौजूद है तो उसमें ईश्वर का अस्तित्व अवश्य ही सिद्ध होता है। बिंदु ब है डेकार्त द्वारा सत्ता मूलक प्रमाण। डेकार्त ने इस तर्क का दो रूपों में प्रतिपादन किया है। पहला है ज्यामितिक आधार पर तर्क का प्रतिपादन। डेकार्त का कथन है कि जिसका अस्तित्व केवल विचारों तक में ही सीमित है, उससे बड़ा उसका अस्तित्व है जिसका अस्तित्व विचारों और वास्तविकता दोनों में है। ईश्वर की पूर्णता में ही ईश्वर का अस्तित्व उसी प्रकार निहित है जिस प्रकार त्रिभुज के प्रत्यय में यह निहित है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर दो समकोण के है। सारांश में ईश्वर प्रत्यय में ही ईश्वर का अस्तित्व निहित है। दूसरा है कारणता के आधार पर तर्क का प्रतिपादन। डेकार्त ने इसी तर्क को दूसरे रूप में भी प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि हमारे अंदर एक अनंत और पूर्ण ईश्वर का विचार है। इस विचार का कारण कौन हो सकता है? हम स्वयं तो नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य तो एक अपूर्ण तथा शांत प्राणी है। अतः वह अनंत तथा पूर्ण ईश्वर के विचारों को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसका कारण स्वयं ईश्वर है जो पूर्ण और अनंत है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। पृष्ठ संख्या 192। अब बिंदु स है स्पिनोजा का सत्ता मूलक प्रमाण। स्पिनोजा डेकार्त की तरह ही ईश्वर के प्रत्यय से ही ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान करते हैं, परंतु स्पिनोजा का ईश्वर या द्रव्य या सब्सटेंस अनंत और पूर्ण है, ऐसा पूर्ण जिसमें सब कुछ समाहित है। अनंतता के अनेक गुणों में अस्तित्व भी एक गुण है। चूंकि ईश्वर अनंत है तो अनंतता के गुण के रूप में अस्तित्व भी निश्चित रूप से समाविष्ट है। यदि ईश्वर में अस्तित्व की कमी होगी तो वह अपूर्ण होगा। अतः यह कहना सत्य होगा कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के अनंत और पूर्ण विचार में ही निहित है। इस प्रकार स्पिनोजा ईश्वर की सत्ता को एक तार्किक आवश्यकता मानते हैं। बिंदु द है लाइबनिज का सत्ता मूलक प्रमाण। लाइबनिज तर्क करते हैं, यदि ईश्वर की संभाव्यता है तो उसकी सत्ता अवश्य है। ईश्वर का अस्तित्व उसकी संभावना का ही अनिवार्य परिणाम है। संभाव्यताओं की आधार भूमि वास्तविकता या अनिवार्य सत्ता का अस्तित्व है। जहाँ तक पूर्ण सत्ता का संबंध है, यदि वह संभाव्य है तो वास्तविक है। फिर उसके अस्तित्व की प्रवृत्ति के लिए कुछ भी बाधक नहीं है। अपने तर्क के लिए लाइबनिज चिदड़ू संबंधी धारणा प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि विश्व की इकाइयां अनंत चिद कण है। ईश्वर सर्वोच्च चिदड़ु है। उसके अंदर सभी सक्रियता और संभावना वास्तविक हो गई है। जब सर्वोच्च चिदड़ु के रूप में ईश्वर में सभी क्रिया संभावना और गति वास्तविक है तो संभाव्यता के प्रत्यय से ही उसकी वास्तविकता सिद्ध हो जाती है। बिंदु यह है हेगल तथा केयर्ड। हेगल तथा केयर्ड ने इस तर्क को अध्यात्मवादी स्वरूप प्रदान किया। दोनों ही इस मत को स्वीकार करते हैं कि चेतना अथवा विचार पर ही संपूर्ण वास्तविकता निर्भर है। केयर्ड ने तो यहाँ तक कहा है कि ईश्वर के विषय में विचार मात्र से ही उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, परंतु हेगल का कहना है कि ईश्वर का विचार अनोखा एवं असाधारण है। विचार के अनूठेपन से ही उसकी सत्ता सिद्ध होती है। ईश्वर का विचार सामान्य भौतिक वस्तुओं के विचार से भिन्न है। यद्यपि विचार मात्र से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, परंतु हेगल का कहना है कि ईश्वर का विचार साधारण वस्तु का विचार नहीं है, इसलिए ईश्वर के विचार मात्र से ही उसका अस्तित्व संभव है। अगला शीर्षक है, क्या डेकार्त तथा अन्य दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण को अनसेल्म के तर्क की नकल नहीं कहा जा सकता? निसंदेह कुछ लोग ऐसी आपत्ति अवश्य करते हैं, परंतु यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो यह आपत्ति निराधार सिद्ध होती है, क्योंकि इन विभिन्न दार्शनिकों ने इस तर्क को विभिन्न रूपों में प्रकट किया है, जिसका आधार उनकी अपनी दार्शनिक मान्यताएं हैं। उदाहरणार्थ डेकार्त ईश्वर के अस्तित्व के कारण मनुष्य में ईश्वर के विचार की उत्पत्ति मानते हैं, जबकि अनसेल्म ईश्वर प्रत्यय से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। स्पिनोजा ने भी अपनी तात्विक मान्यताओं के आधार पर इस तर्क की स्थापना की है। उनके अनुसार अनंत और पूर्ण द्रव्य के प्रत्यय से ही द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यही बात लाइबनीज के विषय में कही जा सकती है। उन्होंने भी चिदड़ू की संभाव्यता और सक्रियता के प्रत्यय के आधार पर सर्वोच्च चिदड़ू के अस्तित्व को सिद्ध किया है, अतः उपयुक्त आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। पृष्ठ संख्या 193, शीर्षक है सत्तामूलक तर्क की आलोचना। सत्तामूलक प्रमाण का खंडन स्वयं अनसेल्म के समय में ही होने लगा था। गैनिलो इस तर्क के बहुत बड़े विरोधी थे। कांट भी गैनिलो के मत के समर्थक कहे जाते हैं। आधुनिक युग में भी सत्तामूलक प्रमाण के प्रबल विरोधी समकालीन विश्लेषणवादी माने जाते हैं। अब इसमें पहला बिंदु है गैनिलो द्वारा आलोचना। ईश्वर प्रत्यय ईश्वर की सत्ता के प्रत्यय को सिद्ध करता है, उसकी वास्तविकता सत्ता को सिद्ध नहीं करता। इस तर्क की मान्यता है कि मन में पूर्ण ईश्वर का विचार है, इसलिए उसका अस्तित्व भी अनिवार्य है। यदि उसके अस्तित्व को नहीं मानते हैं तो उसकी पूर्णता का खंडन हो जाता है। परंतु ईश्वर का प्रत्यय पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय को अस्तित्व को ही सिद्ध करता है, न कि उसकी वास्तविक सत्ता को। बिंदु दूसरा है कांट की दो आलोचनाएं। इसमें बिंदु अ है धारणा से हम धारणा का ही अनुमान कर सकते हैं, वास्तविकता का नहीं। कांट ने इस तर्क की आलोचना करते हुए कहा है कि धारणा से अस्तित्व का अनुमान करना तर्कसंगत नहीं है। उदाहरणार्थ, हम मन में यह धारणा करते हैं कि हमारी जेब में 21 गिन्नियां हैं, परंतु इस धारणा से ही यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वास्तव में जेब में 21 गिन्नियां हैं ही। 21 गिन्नियां की धारणा से 21 गिन्नियों के अस्तित्व की धारणा अवश्य सिद्ध हो जाती है, परंतु उसका वास्तविक अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। ठीक इसी प्रकार पूर्ण सत्ता की धारणा से पूर्ण सत्ता के अस्तित्व की धारणा सिद्ध होती है, उसका वास्तविक अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। अब कांट के उपयुक्त तर्क का निराकरण। यद्यपि कांट का तर्क अकाट्य है, फिर भी डेकार्त तथा हेगल जो सत्ता मूलक तर्क के समर्थक कहे जाते हैं, इस तर्क का प्रत्याख्यान करते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार पर्वत के विचार में घाटी का विचार और रक्त के विचार में लालिमा का विचार सन्निहित है, उसी प्रकार ईश्वर के विचार में ईश्वर का अस्तित्व सन्निहित है। हेगल भी कांट के तर्क का खंडन करते हुए कहते हैं कि चूंकि ईश्वर का विचार अलौकिक, असाधारण और अनोखा है, और यह संसार की साधारण तथा अपूर्ण वस्तुओं के विचार से नितांत भिन्न है, इसलिए कांट द्वारा की गई आलोचना साधारण वस्तुओं पर ही लागू हो सकती है। ईश्वर विषय विचार पर कांट के तर्क को लागू नहीं किया जा सकता। कुछ अन्य विचारक भी सत्ता मूलक तर्क का समर्थन करते हुए कहते हैं कि विचारों से वस्तुओं की सत्ता अवश्य स्वीकार की जा सकती है। यदि ऐसा न हो सकता तो सभी तर्क व्यर्थ हो जाते। यदि वास्तविकता के विषय में विचार प्रामाणिक न माने जाएं तो हम निराशाजनक संदेहवाद की स्थिति में डूब जाएं। अतः विचार के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। बिंदु वह है सत्ता मूलक तर्क में आत्माश्रय दोष है। कांट की दूसरी आलोचना यह है कि सत्ता मूलक तर्क में आत्माश्रय दोष है। ईश्वर की सत्ता की धारणा में ही इसके अस्तित्व को मान लिया गया है, और फिर यह अनुमान किया गया है कि ईश्वर की धारणा हमारे मन में है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। यह तो सिद्ध ही करना है कि ईश्वर की सत्ता की धारणा में उसका अस्तित्व निहित है। बिंदु तीसरा है, इस तर्क की कोई स्वतंत्र पृष्ठभूमि नहीं है। विभिन्न दार्शनिकों ने इस तर्क को अपनी अलग अलग मान्यताओं के आधार पर प्रस्तुत किया है, इसलिए इसकी अपनी कोई स्वतंत्र पृष्ठभूमि या आधार नहीं है और न तार्किक बाध्यता ही। पृष्ठ संख्या 194। बिंदु चौथा है, समकालीन भाषा विश्लेषणवादियों द्वारा आलोचनाएं। इसमें बिंदु अ है, अस्तित्व को गुण नहीं माना जा सकता। कुछ आलोचकों का कहना है कि अस्तित्व से गुण का बोध नहीं होता और इसको विधेय के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कांट ने कहा है कि अस्तित्व विधेय नहीं हो सकता और मूर ने भी बताया है कि सत्ता को गुण नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर मसीह का यह उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट कर देता है। यदि हमारे जेब में 1 रुपया है तो उसका मान 100 पैसे का होगा, और यदि वह जेब में नहीं है तब भी उसका मान 100 पैसे का होगा। यही कारण है कि अस्तित्व वास्तव में कोई विधेय नहीं हो सकता, अर्थात अस्तित्व कोई स्वतंत्र गुण नहीं है। इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर न तो पूर्ण है और न उसमें सभी गुण अनिवार्यतः विद्यमान ही हैं, अतः उसमें अस्तित्व का भी गुण नहीं है। बिंदु ब है दो पदों के पारस्परिक संबंध के निष्कर्ष पर वास्तविक सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। पूर्ण सत्ता के विचार से अनिवार्यतः अस्तित्व प्रकट होता अवश्य है, परंतु इससे वास्तविक सत्ता नहीं सिद्ध होती। यह तो केवल दो पदों के बीच का ऐसा संबंध ही है जो एक से दूसरा फलित होता है, परंतु संबंध परिभाषा जनित है, या इसे ज्यामितिक संबंध भी कह सकते हैं। जैसे हम केवल परिभाषा से ही 3 कोणों के योग को 2 समकोण के बराबर नहीं सिद्ध कर सकते, अतः यह कहने पर कि ईश्वर के विचार में अनिवार्यतः अस्तित्व निहित है, ईश्वर की वास्तविक सत्ता सिद्ध नहीं होती। बिंदु स है इस तर्क में ईश्वर एक आवश्यक सत्ता के रूप में माना गया है। आलोचकों का कहना है कि आवश्यक शब्द का उपयोग तार्किक वाक्यों में ही होना चाहिए। इस शब्द का उपयोग वस्तु अथवा सत्ता के विषय में करना उचित नहीं है। अब अगला शीर्षक है क्या सत्ता मूलक तर्क परंपरा मूलक तर्कों का मूलाधार है। इस विषय को लेकर लोगों में 2 विचार प्रचलित हैं। कुछ लोगों की यह धारणा है कि परंपरा मूलक अन्य तर्क सत्ता मूलक तर्क के ही विभिन्न रूप हैं, और कुछ के अनुसार सत्ता मूलक तर्क ही अन्य तर्कों का आधार है, परंतु दूसरी मान्यता ही अधिक प्रचलित कही जा सकती है। अस्पष्ट है कि प्रयोजनवादी तर्क विश्व संबंधी तर्क पर निर्भर है और विश्व संबंधी तर्क सत्ता मूलक तर्क पर आधारित है। हम देख चुके हैं कि प्रयोजनवादी तर्क में मनुष्य विश्व में व्याप्त व्यवस्था को देखकर ही व्यवस्थापक के रूप में एक ईश्वर की कल्पना करता है, और पुनः विश्व को कार्य मानकर ईश्वर को कारण के रूप में कल्पित करता है। पुनः ये दोनों तर्क सत्ता मूलक तर्क पर इसलिए आधारित कहे जा सकते हैं कि इससे ईश्वर विषयक विचार का समर्थन होता है। गैलवे ने इस तर्क को धार्मिकता की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण मानते हुए भी ईश्वर विषयक विचार और तर्कों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना है। केयर्ड के शब्दों में यह तर्क इसलिए भी अन्य तर्कों का आधार है कि यह विचार को महत्व देता है, क्योंकि विचारों पर ही कोई वस्तु या संगठन निर्भर होता है। अन्य दोनों तर्कों में भी यही तथ्य सन्निविष्ट है कि विचार से वास्तविकता पर पहुंच सकते हैं। इन्हीं आधारों पर कहा जा सकता है कि सत्ता मूलक तर्क परंपरा मूलक तर्कों का मूलाधार है। अब अगला शीर्षक है सत्ता मूलक तर्क का समर्थन एवं महत्व। सत्ता मूलक तर्क के विरोध में बहुत कुछ कहा गया है। पृष्ठ संख्या 195 विशेषकर भाषा विश्लेषणवादी इसकी कटु आलोचना करके इसको व्यर्थ करने का उपक्रम करते हैं, परंतु उनका यह प्रयास तब निरर्थक हो जाता है जब हम वैज्ञानिक भाषा और धार्मिक भाषा में अस्पष्ट अंतर देखते हैं। वैज्ञानिक भाषा को आधार बनाकर भाषा विश्लेषणवादी धर्म की छानबीन करते हैं, परंतु धर्म उनके क्षेत्र के बाहर प्रतीत होता है, क्योंकि वैज्ञानिक धर्म की भाषा धार्मिक भाषा होती है और उनका नियम वैज्ञानिक भाषा के नियम से भिन्न होता है। धर्म का मूल आधार विश्वास है। धार्मिक प्रवक्ता अपने पक्ष में सत्ता मूलक तर्क के आधार पर यदि ईश्वर विचार और उसकी अनिवार्य सत्ता पर बल देता है तो इसके पीछे उसका एक निष्ठ विश्वास ही है। अतः धार्मिक भाषा में वह इसी को व्यक्त करता है कि ईश्वर अनिवार्यतः वास्तविक है। भाषा विश्लेषणवादी ईश्वर के अनिवार्य अस्तित्व को लेकर खींचातानी करते हैं, परंतु धार्मिक व्यक्ति का ईश्वर को अनिवार्य रूप से अस्तित्ववान कहना विश्वास तथा धार्मिक भाषा के ही कारण संभव प्रतीत होता है। इस आधार पर सत्ता मूलक तर्क का समर्थन किया जा सकता है। सत्ता मूलक तर्क का कई रूपों में महत्व स्वीकार किया जा सकता है। प्रथम, केयर्ड ने विचार मात्र से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास का प्रबल समर्थन किया है और इस आधार पर सत्ता मूलक तर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार से ही यह ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। द्वितीय, सत्ता मूलक तर्क परंपरा मूलक तर्क का मूल आधार है। तृतीय, सत्ता मूलक तर्क ईश्वर को केवल विचार मात्र ही नहीं बल्कि एक वास्तविक सत्ता मानता है। यह धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।